कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीती लागवे। और ये तो वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में भी स्पष्ट हो गया कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो भक्ति भी करो। यही आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। आप तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं, दिखा रहे थे करके। वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा जंगल में जाकर वहां दूना लगा के या किसी प्रकार खड़े बैठे है, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो सही मंत्र हो अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता, उसका मंत्र बता दिया 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम का ऊपर एक कवर होता है उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खान का नहीं छिलका उसके अंदर है वो। तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को। तो उस परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का, परम शांति प्राप्त करने का केवल एक ओम तत्सत ये तीन अक्षर का मंत्र है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 तीन मंत्रों में और 19 में एक और अलग से ज्ञान दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरी भक्ति चार प्रकार की करते हैं। एक अर्थार्थी यानी ब्रह्म साधना जो किया करते थे ब्राह्मण लोग, केवल वेदों से ही अनुष्ठान करते थे, चाहे कोई किसी को का संकट निवारण के लिए, अर्थ माने संकट दुखी, संकट निवारण के लिए और अर्थार्थी धन लाभ प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल कोई अन्य मंत्रों से कोई अनुष्ठान करता है ऐसे नहीं करते थे, वो केवल वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला, वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, जैसे भी उसने गुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो वक्ता बन गया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उस खिचड़ी ज्ञान से। ये महर्षि दानंद कैसे न कक्का पता नहीं था, महर्षि पाक गए। तो ये जिज्ञासु था, घर से निकला था परमात्मा के लिए, आगे वो नकली गुरु मिले इनको, उन्होंने जो उसमें भर दिया उसने आगे वो बच फैला दिया। तो ये कहता तीसरे जो जिज्ञासु अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भक्त नहीं है। चौथा ज्ञानी बताया है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इस जीवन का कोई यूज नहीं। नंबर एक। नंबर दो, एक तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यानी मोक्ष नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं इस मिट्टी का। तीसरा, उनको यह ज्ञान हुआ कि इन देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। तो वो इस कारण से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, वो केवल ब्रह्म साधना करने लगे। वेदों को जैसा ब्रह्मा जी ने समझा तो उसके बाद सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है और जैसा उसने वेदों का अर्थ समझाया वही हमारे ब्राह्मणों के पास था और जो आज तक ये तरहित वो आपके समक्ष है, ये केवल जो ब्रह्म के साधक थे वो केवल ओम जाप करते थे और कुछ नहीं। इन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आया कि तुम ये तो और भी बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी जानकारी कोई संत रखता है, तत्वदर्शी संत रखता है, वो ज्ञान वो है जो भगवान खुद आकर अपने मुख कमल से बताता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उसके मुख से उच्चरित है। और यही चारों वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार सुनाया है, बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, इसका संक्षिप्त सारांश दास बता देता है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उसके सतलोक में, और वहां मनुष्य के राजा के समान जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, सिर पर मुकुट मुकुट धारण करके ऐसे बैठा, वहां से गति करके आता है इस लोक में, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है, और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर घूम अपने मुख से बोलकर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यहां तक लिखा है कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 17 और 18 में स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव, और कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से दोहों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है परमात्मा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में स्पष्ट कर दिया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में यह स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जिसके बारे में पहले जिक्र चलता आ रहा है, वो पूर्वोक्त परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर यथार्थ ज्ञान सुनाता है और वो एक गुप्त मंत्रों का भी को भी सार्वजनिक करता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन करता है यानी उनको प्रकट करता है, जो भक्ति के यथार्थ मंत्र है उनको भी आविष्कृत करता है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते सोहम शब्द किसी वेद गीता और आपको पुराणों में नहीं मिलेगा, ये सोहम शब्द हम लाए, वैसे मूल ग्रंथ है वेद और गीता, इनमें सोम शब्द नहीं मिलेगा। यदि किसी अन्य शास्त्र में है तो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इनसे मिलते रहे हैं, जैसे शंकर भगवान को भगवान मिले थे कबीर साहब साधु रूप में, और इनको भी ये सोहम मंत्र दिया था, ये उसका जाप करते हैं। लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं दिया इनको, किसी को ओम दे दिया, किसी को हरिओम दे दिया, विष्णु जी को लक्ष्मी को हरिओम दे रखा, ये उसका जाप करते हैं और हम भी उसी का जाप करते हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ, इसलिए इन मंत्रों को आपको इसलिए दिया गया है। ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये मंत्र है। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था और गरीबदास जी को बताया था, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो यही वेद बताता है कि वो परमात्मा जब आते हैं अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रचार करते हैं तो उस एक भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों का भी, गुप्त मंत्रों का भी वो सार्वजनिक करते हैं, जो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अब इनके या बुद्धि में नहीं आई, ये वेदों में इतना ढेर सारा ज्ञान है, तुम कर क्या रहे हो? वो मंत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ जो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये तो ब्रह्म का जाप है ओम, और ओम जाप पर गाटा जोड़ रहे, सारा जीवन खो दिया। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसे सब सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे जितने भी ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु और शिव जी तक, और नीचे के तो गिनती क्या, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। उसमें किसकी भक्ति बता रखी है, स्वयं परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यह इस दास के ऊपर प्रजा की है, क्योंकि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे अच्छी आत्माओं को, उनको मना कर दिया था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इन मंत्रों को किसी को सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी जो मैंने पार करना सभी संसार को, उस समय ये नकली लोग जितने भी गुरु हैं यही ज्ञान और यही मंत्र देते पाओगे, और ये हैं काल के दूत, इनको अधिकार है नहीं ये जाप देने का। तो अनधिकारी जो पासपोर्ट बना हुआ या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, चालक प्रमाण पत्र, वो कामयाब नहीं होता समय पर, हर लगता एक जैसा ही है। तो परमात्मा ने इसलिए आंख में चौनी करके इस समय तक इस ज्ञान और इस समाधान को गुप्त रखना था, और अब सार्वजनिक करने का आदेश दास को हो चुका है, अब ये कर रहा है, और तो आप समझ रहे हो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रश्न चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया, लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में स्थित रहे। ओए होए, अब देखो इन हमारे धर्म गुरुओं ने सातवें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुतम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई, उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है, तो कितनी अकल होगी इन धर्मग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की, तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपराव ना सच्चाई छे नी ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उद्धार आत्मा, सातवें अध्याय 18वें श्लोक में श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में दास वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये है तो उद्धार, नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली यानी ब्रह्म, ये काल बोल रहा है, मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित रहे, घटिया गति। अब ये घटिया क्यों कही अनुतनी तो सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, गलत कर रखा है ना, इसलिए कहा कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में इसने बता दिया कि मेरा देखो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहोगे तो इसकी जो मिलने वाली परम गति वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, और खुद भी इसने स्पष्ट कर दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसने यह भी स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो जिन्होंने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सनातन शाश्वत स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां गए प्राणी फिर लौट कर नहीं आते, और ब्रह्म साधक तो पुनर्वृत्ति में। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का ये अर्थ है कि मेरी साधना करने वाला फिर भी अनुतम घटिया साधना में लीन रहा, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटेगी नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी शाश्वत स्थान मिलेगा नहीं जहां जाने के बाद वापस नहीं आते, तब तक परम शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसने अपनी साधना को अनुतम कहा, घटिया कहा। और जैसे एक तृण कृषि की कथा दास बहुत बार सुनाता है, एक तृण कृषि थे, उन्होंने वो थे उद्धार ज्ञानी आत्मा, उन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पित हुए, जैसा ऋषियों से ज्ञान हुआ ओम नाम का जाप और हठ योग किया। हठ योग किसी साधना में किसी वेद में प्रमाणित नहीं है, ना किसी सदग्रंथ में प्रमाणित है। ये भूल कहां से लगी इनको? ब्रह्मा जी जब नारद जी पूछ रहे हैं देवी पुराण के 3रे स्कंद में कि एक ब्रह्मांड की रचना बताओ पिताजी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद क्या बताऊं, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है, फिर मैं खोज करने लग गया, ऊपर नीचे धक्के खाए, फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो इसने ब्रह्मा जी ने या आकाशवाणी थी तक काल की ब्रह्म की कि तप करो, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि ये सामने तो आता नहीं, गुप्त आदेश देता रहता है इनको, तो ये वहां से ले लिया तप करना इसने ब्रह्मा जी ने, जबकि वेद तो इसने बाद में प्राप्त हुए, जब सागर मंथन किया प्रथम बार, जब वेद काल के परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था, 500 वेद दिए थे इसको इंक्लूडिंग ये सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान, इसके अंदर फीड कर दिए थे वहां सतलोक से, इसके हृदय में भेज दिए थे काल के में। जैसे आप देखते हो आजकल यहां से ईमेल के माध्यम से फिल्म की फिल्म चली जाती है दूसरे स्थानों पर, वहां डाउनलोड कर लो, ऐसी इसके वहां भेज दिया। जब ये इसने बाहर डाउनलोड किया सांसों के द्वारा इसके बाहर आए थे सारा वेद, इसने जब पढ़ा इसने देखा कि उस वेद में वो कंप्लीट एक का वेद था, एक पूरा ग्रंथ था, इसने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो बहुत जानकारी है ऊपर की सच्चे भगवान की, इसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद भगवान के डर से ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साधना केवल इस ब्रह्म तक की है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। 4 वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, धर्मदास 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे, इन 4 वेदों में मेरी महिमा कंप्लीट भर रखी है कति, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं यानी जिस ज्ञान से जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो इसमें नहीं है, वो तो परमात्मा स्वयं आकर देता हो, तत्व ज्ञान उसके अंदर है। तो जब तक उस परमात्मा की विधि प्राप्त हुई नहीं ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ। तो ये इस प्रकार इन ऋषियों के साथ धोखा हुआ, इन्होंने ओम नाम तो ले लिया वेदों से पूर्ण परमात्मा का जान कर और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानने लगे, इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहने लगे, इसी को पूर्ण परमात्मा, इसी को अक्षर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को ब्रह्म, कोई बात हुई। एक स्टेट के मंत्री को मुख्यमंत्री को कोई प्रधानमंत्री भी कहो राष्ट्रपति भी कहो तो कितना विद्वान है वो, क्या जाना उसने उस प्रोसीजर को। तो इस प्रकार इन ऋषियों के साथ अभी तक इन्हों धोखा हो गया। तो इस तुनक नाम के ऋषि ने वेदों वाला तो वो मंत्र ले लिया, उसका जाप शुरू किया और हठ योग ले लिया। अगर मां की दंत कथा लोक वेद से, ये वेद में नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में जो दास ने आपको बताया कि तीनों गुणों से विरुद्ध गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से जो हो रहा है, ये सब इसका निमित्त कारण मैं ही हूं। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से सती थी, शंकर जी से संहार हो रहा, इसका नियमित कारण गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता मैं हूं। फिर इसने ये बताया ब्रह्म विष्णु महेश तक की इनकी पूजा में जिनकी बुद्धि स्थिर है, इनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक और निर्णय ज्ञान दिया है, जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है, ये स्थाई नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। फिर गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, 23 और 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं तो उनके तक गति होती है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है न ही कोई सुख होता है, यानी यूजलेस। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद का किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 17वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक निर्णायक ज्ञान दिया है। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और जो मनमानी साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो अच्छी आत्मा है वो तो इन देवताओं की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जो वो तो अच्छी आत्मा होती है, और दूसरे जो होते हैं वो तो सतोगुणी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, लेकिन अच्छी आत्मा जो होती है वो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की, वो तो सतोगुण स्वभाव के होते हैं और रजोगुण स्वभाव के होते हैं ये जो साधना करते हैं ये यक्षों की और अन्य साधना जंतर मंत्र भूत प्रेत पितरों की, और जो तमोगुण प्रभाव के होते हैं ये सेवड़े टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की साधना करते हैं। और लेकिन इन सब का फिर निर्णय दिया है 17वें अध्याय के 6 श्लोक में कि ये सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख इस शरीर के अंदर मुझे भी और परमात्मा का भी वास है इसके अंदर, उसको भी ये क्रस करते हैं, इनको राक्षस स्वभाव का जान और ये अच्छी आत्मा नहीं है, क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं। परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते हैं जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने, वो टीचर कहां जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है, इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है, ये कद्दे समझ माजी उतर है। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं, क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के सद ग्रंथ नहीं पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने उस परमात्मा की। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि सबसे पहले गुरु हो और पूरा हो, अब जो प्रश्न चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये उद्धार आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में सतीत रहे घटिया में, उसको अपनी अनुतम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा गीता ज्ञानदाता ने, जैसे चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष साधना की, समर्पित हो गए, कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम केवल एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो अज्ञानता से उसने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। और हठ योग ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनके धर्मगुरु ब्रह्मा जी थे सबके, कि ब्रह्मा जी ने वेदों को जो जाना है किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, वो फाइनल हो गया उनके लिए कि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष मानते हैं ये ज्ञान के। तो इसलिए निसंशय होकर उस गलत साधना पर आरूढ़ हो गए, हजारों वर्ष तप किया। गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कहता है कि अर्जुन जो मेरा रूप तूने देखा है, ये भयंकर रूप जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया था और कहा था भगवान इस लीला ने समेट लो, कहता है ये है मेरा वास्तविक रूप और इसके दर्शन तेरे से पहले ना किसी को हुए, ना आज्ञा होंगे, ना किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। गुणात्माओं आप शिक्षित हो, बालक नहीं हो, और सबके घर में तकरीबन जो साधक हैं हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के घर में गीता जरूर पाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है वो हमारे लिए रजिस्ट्री कैसी है, जैसे तहसील में रजिस्ट्री हो जाया करे, हम उसको इतना ऑथेंटिक मानते हैं, इसमें जो लिखा है सही है, ये पढ़कर देखना। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से जो साधना जिन्होंने की भगवान नहीं मिल सकता, तो भगवान उनको मिलना ही नहीं था, उसमें कुछ और उनको ये सिद्धि वगैरह आ गई जिनकी हमने कति आवश्यकता नहीं थी। इन सिद्धियों के बल से ये महर्षि पा किए। अब चुनक ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान तो इनको मिलना ही नहीं था, मिला ही नहीं, ये एटम बम बन गए, एटम बम सिद्धि के। उधर से एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, और ये राजा लोग दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे घोड़ा घुमाकर आते हैं जिसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं, राजा का पर्सनल घोड़ा होता है, हॉर्स पर्सनल हॉर्स होता है, और उसके हॉर्स उसके गले में पट्टी बांध दी जाती है, पंपलेट लटका दिया जाता है कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, और जिसने राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, अन्य छोटे राजा उसके अंतर्गत थे पृथ्वी के, वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा, राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी, पहले मेजरमेंट अक्षौणियों में होता था, 72 अक्षौणी, एक सीधा सा समझ लो 72 करोड़ समझ कर चलो, 72 करोड़ सेना है। अब जो भी राजा पंपलेट को पढ़ रहा था वो सरेंडर कर देता कि मुझे स्वीकार है, मुझे उनसे लिखवा कर लेते थे, तो घोड़ा वापस आ रहा था, जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए वो लाबड़दा, जो वापस आ रहे थे जब ऋषि उधर से काल ने उसका रिमोट से उसमें प्रेरणा कर दी। अब देखो इस काल के जाल को भगवान की तत्व ज्ञान से समझेंगे, पहले तो ये क्या करता है, इनको गलत साधना करवा के एटम बम बनवा लेता है और फिर स्वयं प्रयोग करता है इनका, जैसे ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कर दी तप करो, 1000 वर्ष तप किया उसमें सिद्धि आ गई, अब रिमोट से कहा कि चलो सृष्टि करो, अब जब वो सिद्धि खत्म हो जाएगी ब्रह्मा मरो और गधा बनो, चलो हो गया काम इसका। अब इसने ऐसे ही इसके साथ किया हुआ, चुनक ऋषि के साथ किया, जब वो परिपूर्ण हो गया, बम बन गया एटम बम सिद्धि का, तब उसके अंदर प्रेरणा करती कि ये कौन है, कहां से आए हो, पूछा उन सैनिकों से, सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी हम मानदाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं। उस ऋषि ने पूछा कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, भाई खाली कैसे है ये, कि राजा का घोड़ा इस पर बैठ नहीं सकते, इसे गले में क्या लटका रखा है, कि इसमें ये लिखा हुआ ऐसे ऐसे, तो ऋषि ने पूछा कि सभी पृथ्वी पर घूमे किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा कि नहीं, और सैनिक होते ही हम तो मुंह फट, कहने लगे कौन पकड़े, किसकी मां ने दूध पिलाया है, जाड़ तोड़ दिया हम उसकी, पता है इसमें लिखा राजा के पास 72 करोड़ सेना है, अब ऋषि, अब काल प्रेरणा, क्योंकि साधना काल की रखी तो काल जैसे काम करेगा वो। तो उसके मन में आई कि इस राजा को सबक सिखाना चाहिए, इसमें अभिमान बहुत हो गया। अब ऋषि भगत का अर्धगत के साथ क्या संपर्क, अकल के चोर थे ये। अब उन पंगा पा लिया कि घोड़ा भाई मैं पकड़ता हूं। ऋषि बोले मैंने घोड़ा पकड़ लिया और तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है अपनी जपले माला बाबा जी, चुप करके इसी में खैर है तेरी। अब ऋषि भी पूरा अहंकारी, वो भी काल था पक्का, कहने लगा भाई मैंने जो दौट लिया और घोड़ा बांध लिया जा बे, कर ले तुमने जो करना, कह दे तेरे राजा। अब देखो 1000 वर्ष तक डलेड होए और क्या प्राप्ति की, सिद्धि। उस सिद्धि से 4 परमाणु बम बना लिए। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। इस साधना से जब सिद्धि आ जाती है तो वचन से, परमात्मा ने भी वचन से सब सृष्टि रची और उस परमात्मा से थोड़ी बहुत हवा टायर में भर के हरियाणी पाक जाते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब उस सिद्धि से उसने 4 पुतली बना दी। संत भाषा में उसको पुतली कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में 4 परमाणु बम समझ लो। अब जाकर के सैनिकों ने राजा से बताया तो महामंत्रियों की पंचायत करी। मंत्रियों ने कहा कि राजन आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरे का मुंह उठेगा। और निप द इवल इन द बट, बुराई को प्रारंभ में समाप्त कर देना चाहिए और उसको खत्म कर दो ऋषि को। तो एक आदमी को मारने के लिए उसने क्या किया, राजा के मंत्रियों ने 72 करोड़ सेना के 4 पार्ट बनाए बटालियन, और एक में 18 करोड़ सेना एकदम भेज दी कि और भी जनता देखोगी इतनी सेना जा रही है, सबके कलेजे धड़केंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा बकवाद करने की, इस उद्देश्य से। अब जो ही उधर से ऋषि ने वह एक पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का सर्वनाश कर दिया। उसके परमाणु बन गए न जाने कितनी पुतली बनकर, कट्टा कट तलवार दिखे चलती, सबकी गर्दन काट दी। राजा ने दूसरी भेजी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस तुणक ऋषि ने नाश कर दिया। अब यहां सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं परमात्मा, और इसलिए ये काल कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो डर, लेकिन मेरे वाली इस घटिया गति में सचित रहे। अब इसके साथ क्या बनेगा, यहां सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि बेहतर अक्षोणी अक्षय करी ये चुनकरी शिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। कहते बेहतर अक्षोणी अक्षय करी सत्यानाश कर दिया 72 करोड़ सेना का, और चुनक ऋषिश्वर एक, यानी चुनक नाम के ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है कि उसने 72 अक्षोणी सेना को खा गया। वो 72 अक्षोणी खा गया यो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे जोरा बने मौत, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष। कहते ये चलते फिरते ऋषि दिखे तुमने, ये तो चलती फिरती मौत है मौत। अब किसी ने कुछ थोड़ा सा टोक दिया, जा तेरा नाश होगा। सारी उम्र तक डले डोए, किसी को आशीर्वाद दे के किसी को बद्दुआ दे के, ये फिर जीव के जीव हो जाते हैं, अपनी उस सिद्धि का नाश कर देते। अब क्या बनेगी इस ऋषि के साथ, इसने ओम नाम का जाप किया इसके, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब की शरण में नहीं आते तब तक हमारे जितने भी पुण्य या पाप या भक्ति कर्म हैं ये अलग अलग से लिखे जाते हैं। तप के कर्म अलग से, जप के कर्म अलग से, पाप अलग से, पुण्य अलग से। तो ये जो इसने ओम नाम का जाप किया इसके प्रभाव से ये जाएगा ब्रह्मलोक में, वह हजारों युगों तक ये ठाठ करेगा अपनी पूंजी तय, ओम नाम की कमाई से। उसके बाद तप से राज होता है, तप से राज राजमदमानम अर्जुनम तीसरे सुकर स्वानम, स्वान माने कुत्ता। फिर ये तो वहां से नीचे पड़ेगा, ब्रह्मलोक से नीचे डाला जाएगा, उसके बाद ये बनेगा पृथ्वी पर राजा चुनक ऋषि उस तप के प्रभाव से। और राजा बनकर आपको पता है ये किसी को बद करते हैं, ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, अपने अपने कुछ कुल के लोगों से अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं देते थे, और न जाने कितने जीवों को लूट लूट कर सत्यानाश करते हैं, शिकार खेलते हैं, पता नहीं कितने पाप कमाते हैं। और फिर ये बनेगा कुत्ता, जब राज का भी समय पूरा होगा एक दिन, फिर बनेगा ये ऋषि कुत्ता, और इसके सिर में पड़ेंगे कीड़े। और वो 72 करोड़ दो सेना मारी थी जीव को, चाहे शक्ति तो सिद्धि तो मार दे वचन से, चाहे तलवार से मार दे, एक जैसा पाप है, तो वो चुन चुन के बदला लेंगे इसके, ऋषि के सिर में कीड़े खाएंगे इसको। तो इसके गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये मेरी साधना 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में की है। ये है तो उदार व्यक्ति ज्ञानी, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनका जन्म मरण मिट नहीं सकता। जब तक जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा इतने परम शांति नहीं हो सकती। और वो जड़ी इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अब आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति उद्धार टाइप के जो ज्ञानी आत्मा यही करते हैं, और यह घटिया बताई दी इसने। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपदे, माम माने मुझे, प्रपदे माने मेरी पूजा करते हैं, मुझे पूजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि के रचने वाला वो पूर्ण परमात्मा है, और उसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, वासुदेव सर्वमिति। अब इन्होंने वासुदेव मान रखा है श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, और वेदों में वासुदेव उस पूर्ण परमात्मा की महिमा का नाम है, उसकी उपमात्मक नाम है। वासुदेव उसको कहते हैं जिस भगवान की सबके ऊपर वास हो, सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, सबका मालिक, वो कुल का मालिक है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण के मालिक है, एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, ये केवल तीन लोक के ऊपर मालिक है, इस पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक पर, बस एक ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में और भी बहुत लोक हैं, तो इनसे अलग 14 लोक और हैं, उनके ऊपर इनका पिता है एक ब्रह्मांड में कंट्रोलर, और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के, तो 21 ब्रह्मांड पर केवल मालिक है ये ब्रह्म सर्वपुरुष। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष, वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है ओनली। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो जो दूसरे नंबर के अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, इतना ही वो स्वामी है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और तीसरे नंबर के परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, हम उसको संत भाषा में सतपुरुष कहते हैं, उसको हम शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं, वो है असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, जिसने अक्षर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न किया, सर्व पुरुष और इसके लोकों को उत्पन्न करके इनको दिए, और उसके अतिरिक्त भी असंख्य लोक हैं, उन सब का मालिक है, वो है वासुदेव। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उसी कसी जो परम शांतिदायक वो कबीर अंगारी असी, वो पाप नाशक कबीर साहब है, कबीर देव है। और बमबारी बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ वही है और वो रित धामा सतलोक में रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अब जैसे कितना निर्णायक ज्ञान बता रखा गीता जी में कि पहले तीसरे बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो सीमित है इनका ज्ञान हरा चुका था, मूर्ख बताई दिए। अपनी साधना कहता कि ज्ञानी आत्मा मेरी साधना करते हैं, वो भी बता दिया मेरी साधना भी मेरी भक्ति करते हैं और उससे प्राप्त होने वाली जो गति वो घटिया है। अब ये कह रहा है कि बहुनाम जन्मानामंत ज्ञानवान माम प्रपते, कि जो मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी है वो भी किसी असंख्य बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो नीचे की भक्ति में लगे रहते हैं। जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, व्रतों की कथा कहते इन मुड़जे रहते हैं ये लोग। वो किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है। और फिर बताया कि वासुदेव की उस पूर्ण अक्षर ब्रह्म की साधना बताने वाला, उसकी भक्ति बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ये दास है वो आज इस विश्व में उस वासुदेव की साधना बताने वाला। एक समय जब परमात्मा अपने विधान अनुसार सतलोक से आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को खेतों में मिले थे, जंगल में जब 10 वर्ष के बच्चे थे गरीबदास जी, उनको सतलोक लेकर गए थे, अपनी सारी व्यवस्था दिखाई थी, अपन जहां भगवान रहते हैं वो वेद बताते हैं, वहां गरीबदास जी को लेकर गए थे, वहां देख कर आए थे। 8-10-12 घंटे के बाद उनको वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, शमशान घाट पर रख दिया था अंतिम संस्कार के लिए गरीबदास जी को। तब उसकी आत्मा को ऊपर की सब सती थी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, भगवान कौन है, कबीर साहब ने अपनी सारी परिचय दे करके और उनके अंदर वो ज्ञान फीड करके वापस छोड़ दिया था। और उस चिता के ऊपर वो एकदम कंपन हुई, खड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान बोलना शुरू किया। इनके ज्ञान को बहुत से भक्तों ने स्वीकार किया। एक उनका शिष्य गरीबदास जी का शिष्य पंजाब में चला गया, पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है वासियर, और उस वासियर पिंड के बाहर एक तालाब के ऊपर जोहड़ के ऊपर वो सुबह सुबह स्नान करके और ब्रह्म वेदी का पाठ कर रहा था, जैसे हम नित नियम करते हैं। उसमें वो ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जैसे आप भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी गरीबदास जी की वाणी है, उसको सुबह सुबह पढ़ रहा था। शांत वातावरण था, सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उधर से उसी गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी, और वो बहुत लैंडलॉर्ड था, 900 बीघा जमीन थी उसकी, अच्छा किसान था, लेकिन ये पंजाब के जो भक्त हैं, व्यक्ति हैं, सरदार हैं, ये भगवान की वाणी के बड़े जो है इनके इनकी छोटी है इनके हृदय को, ये बड़े इसके ऊपर रुचि रखते हैं। तो जब इन्होंने वो वाणी सुनी उस सरदार जी ने, वो बड़ा प्रभावित हुआ कि ये इतनी गजब की वाणी आत्मा को खींच रही है। तो वो खींचा हुआ उसके पास चला गया। जब उस भक्त ने अपना पूरा नित्यनेम कर लिया तो उससे कहा कि भक्त ये किस महापुरुष की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो उसने बताया जी ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, ऐसी वाणी की ऐसी क्या, उन्होंने तो 24,000 वाणी बोल रखी है, ऐसी ऐसी उनका ग्रंथ बना हुआ है। कि कहां है वो, सरदार जी ने पूछा, राम राय जी ने। उसका उर्फ नाम जुमकरा भी था, जुमकरा, जुमकरा का अर्थ होता जो एक शंका ज्यादा करे, डामाडोल सा मन हो जिसका, बेमीश आदमी को जुमकरा कह देते हैं, जो ज्यादा शंकाएं करता है, यानी वो भगवान के लिए तरफ रहा था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, इसलिए कहते थे तू चंचल है, कभी किधर झुक जाता है, कभी किधर झुक जाता है, इसलिए उसको गांव में उस नाम से झुमकरा भी जानते थे, झुमकरा, झुमक राय। तो उसने उससे पूछा कि पूरा एड्रेस बता मुझे, क्या वो महापुरुष जी अभी तक जीवित हैं, सरदार जी ने पूछा उस भगत से। भगत ने बताया कि हाँ जी वो अभी भी शरीर में है, गांव छुड़ानी जिला वो दिल्ली जब तक थे जैसा भी था, उस स्थान पूरा एड्रेस उसने ले लिया, दर्शनार्थ चल पड़ा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि ये संतों के बड़े सेवक हैं पंजाब के सभी व्यक्ति। तो वहां से चला जैसे तैसे पैदल गया कि जो भी था साधन, गांव में पहुंचा, गरीबदास जी से भेंट हुई, चर्चा चली, तो उन्हें सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति विधि कुछ अन्य ही है। फिर उन्हें बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार, ये धारणक रूप रहा करता। 721 प्रश्न पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर क्रीम तू बे अप्रवर्दिगार। पहले मैले की वाणी है, नानक साहिब की वाणी, हक्का कबीर यानी सत कबीर, हे परवरदिगार, हे सारी सृष्टि के रचनहार करतार। नानक जी कहते हैं ये सत कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है। 731 प्रश्न पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पावे, नीच जात परदेसी मेरा। और काफी डिटेल बताई उसको, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जन। तो सरदार जी के एकदम प्रभावित हुआ और कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया है नहीं। हमारे को पौना घंटे की वाणी है सदग्रंथ साहिब के अंदर, गरीबदास जी का जो ग्रंथ है हम उसको सदग्रंथ साहिब बोलते हैं, सच्चा ग्रंथ, यथार्थ ज्ञान उसके अंदर। तो उसमें एक पौने घंटे तक पढ़ा जाता है, पाठ में बच्चे करते हैं डेली, उसमें आता है, इसमें ग्रंथ साहिब में लिखा है, झुमक राय नाम है उस अंग का, उसमें क्या बोला है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुन रही झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा। कहते इस ज्ञान के जानने वाला, ये तो पैसे के ऊपर नाच हो रहा सबका, और इस तत्व भेद के जानने वाला तुझे करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई मिलेगा, अरबों में कोई ग्रक। जैसे हमारी देसी भाषा है हरियाणा की, किसी के पास घना धन होता ना, घने पैसे होते, सेठ साहूकार होता, तो उसको यूं क्या करें भाई, तो धन में ग्रक हो रहा, ग्रक यानी खूब धनाढ्य व्यक्ति को ग्रक कहते, धन में ग्रक है भाई तो, या किसी में ताकत ज्यादा हो नोगा हंगे में गर्क है वायु, यानी ताकतवर कंप्लीट समर्थ है। तो इसमें बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा, अपन आत्माओं, अभी तो आप जो दास का एक वर्ष दो वर्ष सत्संग सुन चुके हैं वो तो फाइनल हो चुका है, कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई इस ज्ञान के जानने वाला, समाधान के जानने वाला संत नहीं है। और नए बच्चे वो थोड़े दिन में जान जाएंगे, पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी है, जिसमें साधु संत मंत भी आ लिए, उसमें 7 अरब के अंदर ये दास, एक रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास ये विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। अब कहते हैं पैसे के ऊपर नाच नचा रहे हैं, मतलब नहीं, कथा करो, पैसा मिल गया जेब में डालो चल भाई। एक पंडित जी था, मनीराम नाम था उसका, मनीराम, और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो एक सप्ताह की किराया करते हैं, उसने एक महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की, लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे, पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था, एक रुपए के अंदर भैंस आ जाती तो 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उसमें रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी, 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से होया करें, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा ना जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली चंपा के लिए दिल्ली से, और उसी दिन जिस दिन भोग पड़ना था उसी दिन बराबर में चमटा गाड़ दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी चांदी के, 500 रुपये का सारे गांव ने, और 30 दिन में पंडित जी का आए 30 रुपये, 30 दिन उसने ड्रामा करा 30 रुपये आए, और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मणिराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहां कोई संत रहते हैं गरीबदास जी, वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां, कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं, भी आसन दो, अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिया। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी कुशल हो? मणिराम जी कहता महाराज क्या कुशल है, कहते कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया, अन्यू ना बताओ बीमारी के है, कहानी क्या है। तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मणिराम को 30, यो रोड़ा भाई इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहां का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने, यो अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपा के लिए 500 लेगी, यो नो दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपा के लिए तो कम कोनी, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है, आपके पास क्या है जो तू जनता को बांट रहा है बता दे मुझे। कथा की आपने, कहां जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। कहा जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के शराब से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका, सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था परीक्षित ऋषि को, केवल यहां से व्यर्थि हटानी थी, उस कथा के प्रभाव से वो सर्प ने तो डसना था, उसने मरना भी था, वो ये तो ये कर ही नहीं सकते, तो केवल इतना लाभ भी कि यहां से व्यर्थि हटगी और स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने यज्ञ धर्म घड़े कर रखे थे। स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएगा वो तो अलग बात है, कुत्ता भी बनेगा, राजा था वो परीक्षित। जो प्रसंग चल रहा है, तो गरीबदास जी ने कहा कि उस समय ये कहां गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा किए, था क्या तुम्हारे पास? तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तरफ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने, क्यों पढ़ रखी थी कथा उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से, कि फिर कारण क्या है दाता कि भाई भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिस जिसका तेने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा, का तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया महाराज मंडल कल्याण जी, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं करणी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भोकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक पंडित जी था, वो क्या कर रहा था कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उसने जैसे हम नित्यनेम करते हैं ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया, और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहां पहुंच गया, उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था। अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए, डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे, कुछ गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो कि नहीं। प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया, अब मैं यहां बैठकर पाठ करना चाहता हूं रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज्यादा, उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहां बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा, प्यारा पारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था, भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ाऊ रख दी थी गद्दी पर, भगवान राम की, रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था, भाई हो तो ऐसा। सबने ताड़ी पेटी, वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहां बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी, उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्य उदय हुआ मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था, और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। आग जी क्या और भी कहने जी, जाओ इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा करने का, कि नहीं कल नहीं जा सकता। भी कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊं क्या काम है इसको, अग बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसके ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है, कल इसकी कोर्ट में तारीख है, हर मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा व्रत की कि भाई होता है ऐसा, आराम भाई उस पर केस कर रहा है अपने भाई पर, एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मड़ंगा डाल लाकर उसको कुरुड़ी बोलते हैं।